श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से उसकी निकटता में रहते हुए अपने प्रिय परिवारों के साथ में कुशल पूर्वक हैं। और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और इस पुस्तक के द्वारा से हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से हमें यह समय दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा, आप प्रत्येक की सहायता करें ताकि हर एक आपके वचन को समझकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, इतना ही नहीं अपने जीवन में आपको जगह देने पाए और आपके उन आशीषों को जीवन में ग्रहण कर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में है, दबाव में है, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से। प्रभु, हमारी विनती है कि आप उन सब के साथ हो, उनके जीवन को आप स्पर्श करें ताकि वे इस बात को समझने पाएं, जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि आप सच्चे और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। आप उनके जीवन के हरे पापों को भी जानते हैं। पिताजी, आप उन्हें क्षमा करें, आज के वचन के द्वारा आप उन्हें आशीषित करें, चंगाई छुटकारा दें, अपनी महिमा लें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरिया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल के पुराने नियम में पाया जाता है। जकरिया प्रभु यीशु के आगमन के युग की चर्चा करते हुए कह रहा है कि उस समय सब देश यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठे होकर उस पर आक्रमण करेंगे। तब परमेश्वर बैरियों की सेना के जवानों को घायल कर देगा और यहूदा के अगुए आग के समान अपने बैरियों को ध्वंस कर डालेंगे। यरूशलेम वासी इस समय तीतर वितर नहीं होंगे, वे वहीं बसे रहेंगे। प्रभु राज में यरूशलेम वैभव से पूर्ण होगा, परंतु परमेश्वर यहूदा को भी ऊंचा उठाएगा। उनका एक एक दुर्बल जन भी दाऊद के समान शूरवीर होगा। अंत में परमेश्वर कहता है कि वह यरूशलेम के विरुद्ध खड़ी होने वाली हर एक जाति को नष्ट कर डालेगा। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसराइल का उद्धार। यरूशलेम पर विदेशी सेनाओं का आक्रमण होगा, परमेश्वर उनकी रक्षा क्यों करेगा? परमेश्वर उन्हें क्या बचा लेगा? पद 10 इसका कारण स्पष्ट करता है। तो आइए हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद। लिखा हुआ है जकरिया 12 के 10 में, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मेरे मित्रों, यहां पर लिखा है मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। यह एक और कारण है कि मैं आज इसराइलियों के स्वदेश वास को धर्मशास्त्र की किसी भी भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं मानता हूं। धर्मशास्त्र में यही नहीं, योएल में भी, योएल नबी की पुस्तक में भी स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करने वाली आत्मा उंडेलेगा, अर्थात उन्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा, और पवित्र आत्मा के उद्गम के कारण वे परमेश्वर के गवाह होंगे, और परमेश्वर उन्हें महाक्लेश के समय सुरक्षित रखेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन पर मुहर लगा दी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 124,000 पर मुहर दी गई। ये लोग इसराइल देश में वास करने वाले इसराइली हैं, न कि अपनी मर्जी से परमेश्वर की प्रजा में होने का दावा करने वाले लोग। यह गिनती तथ्यों पर आधारित होना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 5-8 पद में स्पष्ट कहा गया है कि इसराइल के प्रत्येक गोत्र से 12,000 जनों पर मुहर की गई है। यदि आप 144,000 में होने का दावा करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका उद्धार नहीं किया गया है और आप कलीसिया के साथ इस पृथ्वी से उठाए नहीं जाएंगे। आपको महाक्लेश के लिए रुकना होगा कि आप पर मुहर लगाई जाए। अतः ये 144,000 इसराइल के समुदाय की अपेक्षा अन्य कोई नहीं है। मेरे प्रियो, एक और बड़ा समूह है जिस पर मुहर लगाई जाएगी, परंतु हमें उनकी संख्या नहीं बताई गई है। ये लोग अन्य जाति हैं जिन पर मुहर लगाई जाएगी। वे महाक्लेश के समय परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। जितना मैं धर्मशास्त्र से समझ पाता हूं, उसके अनुसार पवित्र आत्मा कलीसिया के उठाए जाने के बाद भी पृथ्वी पर रहेगा और पेंतिकोस्त के दिन से पूर्व के अपने काम को पूरा करेगा, अर्थात वह कुछ लोगों पर उतरेगा। जकरिया कहता है कि वह स्वदेशवासी बचे हुए इसराइलियों पर उंडेला जाएगा। सन 1948 में इसराइल एक राष्ट्र बना था और उस दिन से आज तक तो पवित्र आत्मा उन पर उंडेला नहीं गया है। जब उन पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तब वे प्रभु यीशु को अपना मसीह स्वीकार करेंगे। लिखा है तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, यह पश्चाताप के महान दिवस की पूर्ति होगी जब वे उसे निहारेंगे। अध्याय 13 में इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। पद 1 में वह कहता है उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। और इस अध्याय अर्थात अध्याय 13 के पद 6 में वह कहता है, तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में यह घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। उस दिन वे प्रभु यीशु को निहारेंगे और पूछेंगे कि उसकी देह पर ये घाव के चिन्ह कैसे हैं। हमारे मसीह की देह पर हाथ पांव और पसलियों में ऐसे घावों की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। जी हाँ, वह कहेगा, ये घावों के चिन्ह मुझे अपने प्रेमियों के घर से प्राप्त हुए हैं। मैं जब पहली बार आया था तब तुम लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया था, परंतु मैं फिर आया हूं। उस समय वे बहुत दुख मनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया गया था। मेरे मित्रों, हमने एक प्रश्न पूछा था, परमेश्वर इसराइल की रक्षा क्यों करेगा? इस प्रश्न का उत्तर यहां पर है, वह अनुग्रह की आत्मा उन पर उंडेलेगा। जी हां, आज हम में पवित्र आत्मा के अंतर्वास का यही एकमात्र साधन है। आपको पवित्र आत्मा पाने के लिए महात्मा बनने का प्रयत्न नहीं करना होगा, न ही निराशा का सामना करना होगा। आपके लिए जो करना आवश्यक है वह यह है, प्रभु यीशु के पास एक पापी के रूप में आप आएं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। उसके सामने में अपनी सारी बातों को उंडेल दें, अपने पापों को उंडेल दें और कहें कि मैं पापी हूं, प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। तब आप में पवित्र आत्मा अंतर्वास करेगा। पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को शिशु, सांसारिक, दैहिक कहता था। उसने उन्हें लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसके 19 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? जी हां, वह अनुग्रह का आत्मा है। वह मुझे और मुझ में इसलिए बहुतायत से वास नहीं करता कि मैं एक महात्मा या आत्मिक व्यक्ति हूं या मैं दूसरों से आगे हूं। जी नहीं, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अनेकों से बहुत पीछे हूं। यह तो उसका अनुग्रह है कि वह यह सब करता है और वह इसराइल के साथ यह सब कुछ करेगा। उसका कारण भी यही है, क्योंकि वह मेरे साथ ऐसा अनुग्रहकारी रहा है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वह इसराइल के साथ भी अनुग्रहकारी हो। मेरे मित्रों, इसराइल उसे जानेगा, परंतु तब जब उनकी आंखों पर से पर्दा उठ जाएगा, जैसा पौलुस दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 से 16 पद में लिखता है, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। इस पर्दे का अर्थ यह नहीं है कि वे उत्तरदायी हैं। पौलुस कहता है कि जो भी प्रभु की ओर फिरेगा उसके हृदय पर से पर्दा उठ जाएगा और वह प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में देखेगा। मेरे मित्रों, यह बात किसी भी पापी के लिए आज भी सच है। आपके भटकने का कारण यह नहीं कि आपने सुसमाचार नहीं सुना या आप किसी अन्य बात के कारण भटक रहे हैं। आप भटके हुए हैं क्योंकि आपने मसीह यीशु को ग्रहण न करने का एक दृढ़ निर्णय लिया है। यह एक भ्रांति है कि हम उत्तरदायी नहीं हैं। यद्यपि यह अनुग्रह के द्वारा है, आप और मैं उत्तरदायी हैं कि परमेश्वर के अनुपम, अद्भुत और अनंत अनुग्रह के प्रति प्रतिक्रिया दिखाएं। अतः परमेश्वर हमारी योग्यता, हमारे विश्वास के कारण नहीं, परंतु प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें बचाता है। यह धर्मशास्त्र का एक अद्भुत अंश है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक पापी उसके पास आए, क्योंकि वह उन्हें क्षमा देना चाहता है, उद्धार देना चाहता है। जकर्याह के पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में, हरद्रिमोन में हुआ था। फिर से लिखा है उस समय, जकर्याह के उस समय को सुन सुनकर आप ऊब गए होंगे, परंतु आपने अभी कुछ नहीं सुना है। अंतिम अध्याय के अंतिम पद तक आप जकर्याह के मुंह से उस समय सुनते रहेंगे। जी हाँ, अब हमें यह जानना आवश्यक है कि उस समय का अर्थ क्या है। यह वह समय है जिसे यहोवा का दिन कहा गया है। यहोवा के दिन का आरंभ उस समय होगा जब कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी और महाक्लेश आरंभ होगा, और यह समय प्रभु राज के 1000 वर्ष तक चलेगा, अर्थात उस समय तक जब सब विद्रोह का दमन किया जाएगा और अनंत राज्य की स्थापना की जाएगी। अनंत राज्य प्रभु राज ही होगा, परंतु अंतर यह होगा कि उस समय परीक्षा का समय समाप्त हो जाएगा और सब कुछ अनंत काल के लिए निश्चित हो जाएगा। यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा। यह वास्तव में प्रायश्चित दिवस होगा। लोग पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे। मूसा की व्यवस्था में इसराइल के लिए विलाप का एक दिन था जिसे प्रायश्चित दिवस कहते थे। उस दिन वे अपने पापों का प्रायश्चित करते थे। लिखा है उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा। आज के सुसमाचार प्रचार में बहुत कहा जाता है, प्रभु यीशु के पास आओ, मन फिराओ, वह आपको नया बना देगा, आपका व्यक्तित्व नया हो जाएगा और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। और वे आपको तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, परंतु क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप अपने पापों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने उनके बारे में कभी दुख का अनुभव किया है? क्या आपका दिल यह जानकर कभी टूटा है कि आप एक पापी व्यक्ति हैं? यही एक बात मैं एक अभागा प्रचारक आपसे कह सकता हूं। जब मैं अपने अतीत को देखता हूं और अपने कामों पर ध्यान देता हूं जो मैंने किए थे, मैं आपसे सच कहता हूं कि मेरा दिल टूट जाता है। इसी के लिए तो मेरा उद्धारकर्ता मर गया था, मुझे बचाने के लिए, उस भयानक मृत्यु से, उस दर्द से बचाने के लिए। मसीही जीवन में ऐसा विलाप होना आवश्यक है। आज जिस बात की कमी है, प्राचीन समय के एक कलीसिया के धार्मिक आचार की, उस समय स्त्री पुरुष वेदी पर रोते हुए आते थे और प्रभु यीशु को ग्रहण करते थे, परंतु आज ऐसा यदा कदा ही हमें देखने को मिलता है। आज लोग मुस्कुराते हुए आते हैं और सोचते हैं कि उन्हें नया व्यक्तित्व प्राप्त हो गया है। मेरे श्रोता मित्रों, सच तो यह है कि आप एक पुराने सड़े गले मैले चिथड़े हैं। यदि मेरी धार्मिकता मैले चिथड़े हैं, तो सोचिए कि मेरे मैले चिथड़े क्या हैं। यदि हम अपने आप को वैसा ही देखें जैसा परमेश्वर हमें देखता है, तो हम अपने आप से घृणा करने लगेंगे। हम अपने घमंड और अपनी आत्मनिर्भरता से तुरंत दूर हो जाएंगे। ओह, कलीसिया को मन फिराव के बपतिस्मे की कैसी आवश्यकता है। आज इसी की आवश्यकता है, विश्वासियों को मन फिराव की आवश्यकता है, पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। क्या आज आप अपने पापों से मन फिरा रहे हैं? क्या आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं? वचन में लिखा है, जैसा मगिदोन की तराई में हद्रिमोन में हुआ था, यह जनप्रिय राजा योशियाह के मृत्यु के संदर्भ में है। उसकी मृत्यु पर प्रजा में बहुत रोना और पीटना हुआ था। यर्मिया राजा यशिया की मृत्यु पर ऐसा रोया था जैसा पहले कभी नहीं रोया था। जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 12 पद में आगे लिखा है, सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। अलग अलग अर्थात यह एक निजी पारिवारिक घटना होगी। आज हम में से अधिकांश विश्वासियों को ऐसे ही प्रायश्चित की आवश्यकता है, निजी मन फिराव की आवश्यकता है, व्यक्तिगत मन फिराव की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के उस आशीष को पा सकें। जकरिया 12 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। मेरे मित्रों, यह सच्चा दुख है। उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था? उन्होंने अपने मसीह को अस्वीकार किया था जब वह पहली बार पृथ्वी पर आया था तब। अब सोचें कि जब वह दूसरी बार आएगा और सुसमाचार सुनकर मुंह मोड़ लेने वाले वहां होंगे तो क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि उसके पुनः आगमन का दिन आने वाला है। आज यदि आप उसकी आवाज सुन रहे हैं तो अपने मन को आप कठोर न करें। अपने मन के द्वार को खोलकर प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उससे अपने जीवन में आने दें। जी हां मेरे श्रोता मित्रों, केवल एक ही व्यक्ति है जो आपके जीवन को पाप के दलदल से बचा सकता है, आपको निकाल सकता है, क्योंकि इस पूरे संसार में एक ही व्यक्ति है जिसने आपके सारे पापों को, जिसे आपने किया है, जिसकी सजा आपको मिलनी चाहिए, उन सारे पापों को प्रभु यीशु ने आपके बदले में अपने ऊपर ले लिया और उसने क्रूस की मृत्यु सही, ताकि जो कोई उसके पास आए वह उद्धार पाए। वही आपके पापों को क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि कोई आपके लिए नहीं मरा सिवाय यीशु के। मेरे श्रोता मित्रों, क्या आज आप अपने पापों को अपने जीवन में देख रहे हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? बहुत सारे लोग हैं जो आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपने व्यभिचार किया है, आपने हत्या की है, आपने चोरी किया है, आपने लोगों को धोखा दिया है, आपने झूठ बोला है, आपने ईर्ष्या किया है और आप अलग अलग प्रकार के पाप में फंसे हुए हैं। परंतु आप डरिए नहीं, निराश मत होइए, प्रभु यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उसके पास आइए, उससे कहिए, प्रभु यीशु, मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज मैंने जान लिया है, मैं जान गई हूं कि मैंने पाप किया है और इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन आपने मेरे पापों के बदले में मृत्यु को सह ली। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आज मैं पश्चाताप करता हूं, अपने पापों को मैं मान लेता हूं कि मैंने किया है, मुझे आप क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आप आ जाइए, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहती हूं, आप मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए। मेरे श्रोता मित्र, यदि आपने मेरे इन बातों को सुन लिया है और आपने प्रार्थना कर लिया है, निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु आपके जीवन में है, आपके करीब हैं, आपके जीवन को बदल देंगे, आपके जीवन में आशीष देंगे। ध्यान रखें कि आप दोबारा पाप ना करें, उस संगति में ना जाएं। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आपकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान। गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी महिमा, उसकी भक्ति जीवन की है भलाई।